हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 374। वो उसी तरह चुपचाप बिना मनस्वी से मिले या फिर उसे बताए अपने काम के लिए भी निकलने वाला था, लेकिन तभी मनस्वी की आँख खुली और उसे याद आया कि पिछली रात को किस तरह अनय के करीब होकर उसकी बाहों में सोई हुई थी। लेकिन अभी उसे अपने आसपास अनय का कोई भी एहसास नहीं हुआ तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई। लेकिन फिर उसे याद आ गया कि अनय ने ज़रूर अब तक उसे माफ़ नहीं किया है, इसीलिए वो अभी भी उसे इग्नोर कर रहा है। और ये सब कुछ सोचकर उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। लेकिन फिर उसने अपने मन में कहा, कोई बात नहीं अनय, तुम चाहे जितना भी दूर भाग लो मुझसे, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ पर आ जाऊँगी और कहीं भी तुम्हें अकेला तो नहीं रहने दूंगी, खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगी अब। इतना बोलते हुए वो उठी और उसने मुस्कुराकर खुद को सामने लगे शीशे में देखा। उसके चेहरे पर एक आज अलग ही नयापन नज़र आ रहा है, जो कि शायद उसे अपनी मोहब्बत के एहसास को लेकर है। उसे समझ आ गया है कि वो अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी है। हाँ, ये बात वो शायद अभी उससे ये बता नहीं सकती, लेकिन इस एहसास को वो अब और ज़्यादा अपने मन में भी नहीं रखना चाहती। वो फटाफट से रेडी होकर वहाँ पर आई और उसने देखा कि अनय अकेला ही ब्रेकफास्ट कर रहा था और ब्रेकफास्ट भी उसका लगभग ख़त्म होने वाला था, तो मनस्वी वहाँ पर नाश्ता करने के लिए नहीं बैठी। और अनय जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगा, वो भी उसके पीछे आती हुई बोली, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मनस्वी के इस तरह पूछने पर अनय अपनी जगह पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, क्या करना है तुम्हें? मैं कहीं भी जाऊँ? मैं तो तुमसे नहीं पूछता ना कि तुम कहाँ आती हो, कहाँ जाती हो, और वैसे भी तुम कहाँ मुझे सारी बातें बता। अनय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मनस्वी आगे आई और उसका एक हाथ पकड़ते हुए साइड से उसके गले लग गई और उसके कंधे से अपना सिर टिकाते हुए बोली, प्लीज़ इस तरह से बात मत करो ना, और किस बात की नाराज़गी है बताओ ना मुझे। हमने क्या तय किया था कि हम सारी चीज़ों को अपने रिश्ते से अलग रखेंगे, तो फिर क्यों तुम्हें ऐसे? मनस्वी को उसकी बात का बुरा लगा है, इसीलिए वो इस तरह से ये बात बोल रही है। और ये बोलते हुए उदासी उसकी आवाज़ में भी साफ सुनाई दे रही है, जिसे अनय भी सुन सकता है। वो उसे ऐसे सुबह सुबह उदास नहीं करना चाहता था, पर फिर भी अपने मन में चल रही बात को उसके सामने बोलने से रोक नहीं पाया। लेकिन फिर जब उसने मनस्वी को इस तरह हर्ट होते देखा, तो वो भी ज़्यादा देर सख्ती नहीं दिखा पाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं ला रहा बाकी बातों को बीच में, लेकिन मैंने कहा था ना कि ये सारी चीज़ें हमेशा ही बीच में आती हैं। बीच में क्या, साथ ही रहती हैं। ज़िंदगी में कुछ भी इससे अलग नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता भी नहीं, इसीलिए सब कुछ साथ में लेकर चलना होता है। और तुम? मनस्वी ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाकर अनय की तरफ देखते हुए कहा, क्या, मैंने क्या किया? मैंने अब कुछ भी तो नहीं किया, और तुमने कहा था ना कि विराज यहाँ पर नहीं रहेगा, तो मैंने कल रात ही उसे यहाँ से भेज दिया था, सोने जाने से पहले ही। इतना बोलते हुए वो सर उठाकर ऊपर उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि अनय की हाइट उससे कुछ ज़्यादा है। विराज वहाँ पर है या नहीं, इस बारे में अनय को पता नहीं था, क्योंकि वो जब वहाँ से गया तब मनस्वी वहाँ पर विराज के साथ ही खड़ी हुई थी, और फिर उसके बाद वो आज सुबह ही रूम से निकलकर वहाँ आया और विराज के बारे में उसने ना ही पूछा और ना ही घर में इधर उधर देखा, क्योंकि वो सुबह सुबह उस विराज की शक्ल देखना भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगियाँ ऊपर नीचे हो रखी हैं। लेकिन मनस्वी ने उसके बिना पूछे खुद से ही जब इस बारे में जिक्र किया, तो उसे ये पता चल गया और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। तो अनय ने कहा, अच्छा किया भेज दिया तो, लेकिन ये तो तुम बताओगी नहीं ना मुझे कि कहाँ भेजा और अब कहाँ भेजने का प्लान है। अनय ने काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हुए ये बात कही, क्योंकि उसे लगता था है मनस्वी अभी भी उससे काफ़ी सारी बातें सीक्रेट रखना चाहती है और उसे सब में इन्वॉल्व ना करने के नाम पर उसे ये सब छुपाती है। लेकिन मनस्वी ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उसने अपने दोनों हाथों से अनय का एक हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों क्यों तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो और हमेशा ही नेगेटिव सोचते हो? मैं क्यों नहीं बताऊंगी तुम्हें? जब मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी और जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया है, तो फिर आगे भी मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। अनय प्लीज़ बस मुझे ताने मारना बंद कर दो पिछली बातों पर, नहीं तो हम कभी भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और ऐसे ही पुरानी बातों में अटक कर रह जाएंगे। हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तो तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो आई, अनय ने शरारत भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो मनस्वी ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाई और उसे आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करने लगी। उसे इस तरह से देखकर अनय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर कहाँ पर है विराज?
अनय की ऐसी रोमांटिक बात सुनकर मनस्वी को थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा था, लेकिन इस बीच एक अनय ने फिर से विराज का नाम लिया तो उसका पूरा मूड खराब हो गया और उसने गुस्से में अनय का हाथ छोड़ते हुए कहा, क्या विराज विराज लगा रखा है? विराज इतना ही इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए? वैसे भी वो तुम्हारी वाइफ है या फिर मैं? जब देखो तब उसका ही नाम जपते रहते हो। मुझे लगता है सुनैना आदित्य से ज्यादा तो हमारे बीच आ गया है ये विराज, मनस्वी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो अनय को उसका इस तरह से नाराज होना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मनस्वी कभी भी इस तरह से बर्ताव नहीं करती है, लेकिन अभी उसके सामने वो ऐसे बच्चे की, जिद्दी बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी जिसे अटेंशन ना मिल रही हो। इसीलिए अनय ने हल्का सा मुस्कुराया और इस बार वो खुद मनस्वी की तरफ आगे आया और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, रिलैक्स, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, मत बताओ, वैसे भी उसका हम सबसे दूर जाना ही अच्छा है। मैं भी नहीं चाहता उसे अपनी लाइफ में, और बस वो सुधर जाए इतना ही चाहता हूँ। उसके अलावा मैं ऑफिस जा रहा था, वो पूछा था ना तुमने जो मैंने बताया नहीं, और तुम्हें नहीं जाना क्या होटल? चलो साथ में चलते हैं, अनय से बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहा। तो मनस्वी ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं मैं बहुत थक गई हूँ। और तुम नहीं थके क्या? कल इतना कुछ हुआ, ऑफिस जाना इतना भी जरूरी नहीं है, रहने तो आज हम दोनों साथ में घर पर ही रुकते हैं। मनस्वी ने उसके साथ घर पर ही रुकने के लिए बोला, लेकिन अनय के आज कुछ और ही प्लान थे इसीलिए वो वहां पर नहीं रुक सकता था, इसीलिए उसने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं अब देखो मैं तुम्हारी तरह बॉस तो हूँ नहीं जो जब चाहूँ छुट्टी ले लूँ, मुझे तो अपने सीनियर्स को भी जवाब देना होता है ना, तो फिर मेरे बिना शायद काम भी नहीं चलेगा, और वैसे भी कल छुट्टी हो गई थी ना। मनस्वी ने पहले तो बहुत ही गुस्से में आते हुए कहा, बॉस मैं हूं ना तुम्हारी, और ऐसा कौन सा सीनियर है जो तुम्हें परेशान करता है लेट होने पर और छुट्टी के लिए जवाब मांगता है? बताओ मुझे, मैं उसे काम से निकाल दूंगी, और कोई जरूरत नहीं है आज ऑफिस जाने की। मैंने कहा ना रुको यहीं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे अनय। और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा, अनय ने कहा, बातें तो आकर भी हो सकती हैं, और एक काम करो तुम आज छुट्टी ले लो, रेस्ट करो, मैं बस वहां पर होकर आता हूँ, और हो सकेगा तो जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर हम सारी बातें करेंगे पक्का।
इतना बोलते हुए अनय वहां से आगे बढ़ा तो पीछे से उसे मनस्वी की आवाज सुनाई दी, अनय तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना बिल्कुल भी? हाँ क्यों करोगे तुम मुझे पसंद? आखिर मुझ में ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं है, ना ही मैं इतनी सुंदर हूँ, और ना ही मैंने कभी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ किया है जिससे कि तुम मुझे, सॉरी कोई बात नहीं जाओ तुम, मैं शायद कुछ ज्यादा ही। इतना बोलते हुए मनस्वी पीछे की तरफ मुड़ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनय उसका उदास और इमोशनल चेहरा देखे, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भी भर आए थे। अनय उसकी बातों के जवाब में काफी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि अगर वो अभी कुछ बोलता है तो फिर बात बढ़ेगी और उस वजह से शायद उसे वहां पर रुकना पड़ जाए। मनस्वी को इस तरह उदास देखकर शायद वो जा ना पाए वहां से, लेकिन उसका आज यहां से कहीं जाना जरूरी भी था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए अपना हाथ आगे किया, लेकिन फिर वापस अपना हाथ पीछे कर लिया और एकदम से मुड़कर वहां से चला गया। मनस्वी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर जाते हुए कदमों की आवाज जरूर उसके कानों में पड़ी, जिससे कि उसे पता चल गया है कि अनय वहां से चला गया है, और उसके जाने पर उसे ये कन्फर्म हो गया कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वो जो रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए करता है शायद वो बस उसकी मजबूरी है, वही जिस मजबूरी में ये रिश्ता बंधा था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अनय के मन में उसके लिए। ये सोचकर मनस्वी की आंखों में भरे हुए आंसू निकलकर उसके गाल पर बहने लग गए। फिर उसने खुद ही अपने हाथ से वो आंसू पोंछते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो बोया हुआ है, तो अब काटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। तुमने ही कभी उसकी कदर नहीं की, तो फिर कैसे वो तुम्हें पसंद करेगा? ऐसा क्या किया है तुमने उसके लिए? कभी उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे कभी वांटेड फील नहीं कराया, ना ही स्पेशल, तो फिर क्यों उससे इतनी उम्मीद लगाकर बैठी हो? आखिर किस हक से? मनस्वी ने सारा इल्जाम खुद पर ही लगाते हुए खुद को मन ही मन कोसा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वहां से कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि खाने से उसका मन पूरा उचट चुका है और उसका नाश्ता भी करने का मन नहीं कर रहा। आदित्य का घर। कुछ देर बाद सुनैना एक ट्रे में सबके लिए कॉफी लेकर वहां पर आई। वो नैना के साथ स्वीटी के लिए भी कॉफी बनाकर ले आई थी, तो फिर कुछ सोचकर उसने आदित्य के लिए भी एक कप कॉफी उस ट्रे में बढ़ा ली, और अभी वहां पर कुल 5 लोग थे तो वो 5 कप कॉफी लेकर ही वहां पर आई, और उसने सामने टेबल पर वो कॉफी रखते हुए नैना की तरफ देखकर कहा, दी मैंने आपके लिए बनाई है ये स्पेशल कॉफी। उसकी बात पर नैना ने मुस्कराते हुए कहा, अरे वाह आज तो मेरा दिन बन जाएगा इतने दिनों के बाद अपनी सोनू के हाथ की कॉफी पीकर। क्रमशः